तो जैसे ये समय चल रहा है और उस समय के अनुसार बाबा बार बार ज्ञान और योग हम बच्चों में भरता जाए और उसको रियलाइज हम करें और उसका प्रयोग करें। तो दीदी बहुत सुंदर हमारे बीच में आए हैं और उस क्लास का टॉपिक ही ये है कि इस समय की जो पुकार है ज्ञान बाबा की मुरली को और योग को बहुत डेप्थ में अंदर तक हम समझें और उसको फिर हम यूज करें। तो कैसे कर पाए, कभी कभी होते हैं कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि किस तरह से हम उसको यूज करें, तो दीदी हमको ज्ञान और योग को डेप्थ में ले जाके उसको रियलाइज करते हुए और समय की डिमांड हमसे ये है कि हम अपने स्वरूप को ऐसा बनाएं कि हमारे स्वरूप से हर एक को बाबा दिखाई दे। तो आदरणीय अंबिका दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबका ये ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्राह्मण जीवन एक ही टाइम की जीवन ऐसा है जिस जीवन में ही सिर्फ हम परमात्म ज्ञान और योग को डायरेक्ट भगवान द्वारा ही सुनते हैं, भगवान द्वारा ही समझते हैं, भगवान का ही ये डायरेक्ट पालना है। तो इस जीवन में ये वरदानी जन्म है, अवतरित जन्म है। सारी इतिहास में टोटल हिस्ट्री आप ले हो तो सिर्फ ब्राह्मण आत्मा ही अवतरित होने योग्य आत्माएं है, प्रवेश होने योग्य आत्माएं है। ये बाबा ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूं। तो इस जन्म और जीवन की जब इतनी वैल्यू है तो हम उस वैल्यू से अपने ये जीवन को, इस ब्राह्मण जन्म, मरुजीवा जन्म, अवतरित जन्म के जो गहराई से एक समझते हुए, खुद को पहचानते हुए, उस नशे से, उस खुशी से ये जीवन में हम कितना कदम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का जो भी गायन है वो देवताओं को दे दी, देवताओं ने अमृत पिया, अमर हो गए। तो अमृत पीने का समय ही संगम युग है और अमृत पिया ब्राह्मणों ने, जो जाकर सतयुग में अमर बनने के जो गायन है, भले शरीर छोड़ते हैं लेकिन मृत्यु शब्द नहीं है, लेकिन यहां भी हम अमर है, अविनाशी है। क्योंकि ज्ञान योग से जो भी प्राप्तियां है वो अविनाशी है, वो सदा की है। और उसमें, उन प्राप्तियों में हम अमर बने, ये हरि के पुरुषार्थ के ऊपर है। जो भी प्राप्तियां है ज्ञान की, वो निरंतर और अविनाशी हो, उन प्राप्तियों में हम अमर बन जाए। ऐसे नहीं कि कुछ दिनों की या कुछ मास, कुछ वर्षों की ये प्राप्ति है, चाहे वो नशा खुशी ही क्यों ना हो, हमारी टेम्पररी नहीं है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा मुझ अविनाशी आत्मा को अविनाशी प्राप्तियां बाबा दे रहा है, अविनाशी ज्ञान दे रहा है। तो इस ज्ञान की, योग की जो वैल्यू है, महत्व है, उस महत्व से हम सुने, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की, मरुजीवा जन्म की फाउंडेशन है। आपने सुन लिया ज्ञान और योग, लेकिन ज्ञान टोटली क्या है? मुरली है। मुरली ब्राह्मण जीवन का सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, हमारे श्वास है। अगर ब्राह्मण जीवन में निरंतर जिंदा रहना है, विधि पूर्वक उन खुशियों से, उन प्राप्तियों से जीना है, तो उसका आधार मुरली है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान मुरली है। अगर मरुजीवा जन्म की, बाबा जो जीवदान दिया है, विधि पूर्वक हमारी ब्राह्मण जीवन की आयु लंबी नहीं है, या लंबा हमने किया है, उसका कारण लंबी उम्र माना ब्राह्मणों की जो धारणाएं है, ब्राह्मणों की जो स्थिति है, उसके आधार पर जीना, यह है लंबी आयु। अगर बीच बीच में हमारी स्थिति बिगड़ती है, या हम उस नशे, वो खुशी, वो प्राप्तियों में नहीं रहते, माना आयु छोटे कर दिया, तो ये आयु बाबा जन्म पत्री जो बनाता है ब्राह्मण जीवन की, इस जन्म की, उसमें सर्व प्राप्तियां जो भी एक ज्योतिषी बताता है, आयु से लेकर हेल्थ वेल्थ को लेकर के, उनकी संबंधों को लेकर के, उनकी बुद्धि को लेकर के, वो सर्व का आधार बाबा की मुरली है। क्यों? मुरली सिर्फ पेपर में बाबा ने कुछ कह दिया, हमने सुन लिया, नहीं। मुरली चारों सब्जेक्ट की संपूर्ण ज्ञान है, चारों सब्जेक्ट की, रोज की परमात्म पालना है। परमात्म पालना, सर्व संबंधों की पालना मुरली है। मुरली में बाबा हर संबंध से बात करते हैं। कभी मां बन के कहते हैं, मैं ज्ञान अमृत रोज बच्चों को पिलाता हूं, मैं पालना करता हूं, टीचर होकर के शिक्षाएं देते हैं, कभी सतगुरु होकर के ऑफिशियली मुक्ति के लिए, सदगति के लिए बातें बताते हैं, फिर कभी सखा बन करके बच्चे में साथ हूं, सदा आपके सहयोग के लिए तैयार हूं, इतना प्यार से कहता है। बंधु सखा होके हमारा सुख दुख, हमारा दिल लेता है, बाप बन करके भी दिल लेता है, बंधु सखा बन के भी दिल लेता है, और बाप बन करके इतनी बड़ी ऊंची वर्षे की, ऊंची प्राप्तियों की इतना नशा भरता है। किसी का बाप बहुत बड़ा ऊंचा है, राजा है, बच्चों को कितना नशा होता है, वो सारा नशे की बातें मुरली में सुनाता है। तो ये अगर आप गहराई से देखो, फिर साजन बनकर के आत्मा को श्रृंगारता है गुणों से, शक्तियों से, वो मुरली है। कभी धर्मराज बनकर के कहता है, मैं तो चमाट मार के शरीरों को आग लगा के लेके जाता हूं, तुम चाहो ना चाहो लेकिन लेके जाता हूं, इतने ऑफिशियली कहता है। हर संबंध का स्वरूप, हर संबंध का प्यार, हर संबंध की पालना, वो है मुरली। तो मुरली को हम रूटीन ऐसे ही नहीं सुने। मुरली सृष्टि की जितने भी सुख है, सर्व प्रकार की सुख है, वो सारा सुखों का रस का आधार मुरली है। मुरली तान रसेली, तो मुरली सुनते सुनते हर बात की रस, संबंधों का रस ही नहीं लेकिन सर्व प्राप्तियों की, अलग अलग प्राप्तियों का रस, कभी अलग अलग गुणों का विस्तार करता है उसका रस। तो मुरली ऐसे जैसे कि हम गुम हो जाए, खो जाए, वो है मुरली को अपने अंदर लेने के लिए हमारा स्थिति क्या होना चाहिए। जब बाबा इतना सर्व रूप से, मुरली हमारा अधिकार भी है, वर्षा है ना, ज्ञान है, ज्ञान सर्व सिद्धांतों का ज्ञान है मुरली। अगर साकार मुरली लेंगे तो सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बाबा उसी दिन कहता है ना, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फूड मिनिस्ट्री है, लैंड मिनिस्ट्री है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इतिहास की मिनिस्ट्री है, सब मिनिस्ट्री है, तो क्या नहीं है। द बिगेस्ट साइकोलॉजी है मुरली, तो बिगेस्ट साइंस है। तो जो जो सब्जेक्ट लेना चाहो दुनिया में, जितने भी सब्जेक्ट है, उससे ज्यादा सब्जेक्ट तो मुरली है। तो हमें मुरली की इतनी महत्व, इतनी जो उस वैल्यू से हम मुरली सुने तो हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे मुरली भगवान की, भगवान वाच हमारा मुरली है, भगवान वाच हमारा पढ़ाई है। तो भगवान वाच हमारे मुक्ति की ये ज्ञान मार्ग है। तो ये सब सुन के हजम करने के लिए हमारी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरली की समय की अवस्था। क्योंकि उस स्वरूप में हम मुरली नहीं सुनते हैं तो फिर वो आनंद, वो रस, बाबा कहता है ना, बच्चों को बिल्कुल मुरली सुनते सुनते जैसे डांस करे। बाबा कहते हैं मैं डांसिंग गर्ल हूं, मेरे आगे ऐसे बच्चे बैठ के डांस करते हैं तो मुझे भी मजा आता है डांस करने। तो ऐसे ऐसे मुरलियां जो सुनाते हैं, हम ऐसे झूमते हैं मुरली सुनते सुनते, क्योंकि मुरली एक ब्रह्म विद्या है। शास्त्रों में है कि ब्रह्म विद्या कोई मनुष्य नहीं समझ सकता है एक अक्षर भी। तो ब्रह्म विद्या सिर्फ ब्राह्मण ही समझ सकते, क्योंकि वो परमात्मा की ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ बहुत गहरी गुह्य ज्ञान है जो कोई नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए मुरली को बाबा की ज्ञान माना चार सब्जेक्ट, मुरली माना सारे चारों ही सब्जेक्ट की विस्तार होता है हर दिन की मुरली में। वो मुरली को समझने लिए हमें बाबा ने, उनको मालूम है बाबा सर्वज्ञ है, ज्ञान सागर है, इसलिए आते ही हम जन्म लेते ही जिस घड़ी कोर्स हुआ, हम बाबा को पहचाना, मैं आत्मा हूं, ये मेरा बाबा है, उस घड़ी हमें दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि को प्रदान किया। दिव्य बुद्धि बाबा के ज्ञान को ग्रहण करने, अनुभव करने लिए बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, और जो ग्रहण किया अनुभव करने लिए सब जो ज्ञान जैसे बाबा देता है उसको देखने के लिए, स्वयं को देखने, सृष्टि को देखने, बाबा को देखने, परमधाम को देखने, बाबा ने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। ये दोनों बर्थडे गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि। तो ये दोनों वरदान हमें प्राप्त कितना है, इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों बातें जीवन में, इसके ऊपर ये बड़ी बड़ी वरदान कहो गिफ्ट कहो, जिसके ऊपर माया की भी आंख है। सदैव बुद्धि पर कुछ न कुछ प्रभाव डाल करके माया दिव्य बुद्धि को साधारण बुद्धि में चेंज करने लिए टारगेट रखती है। तो इसलिए दादी कहती थी, साकार बाबा जब थे, बच्चे मुरली में आने के पहले आप बच्चों का स्थिति को तैयार ऐसा करना है जो मुरली के समय बुद्धि थोड़ी भी इधर उधर ना जाए। बाबा इस बात पर अव्यक्त मुरलियों में भी, मुरली के टाइम ये नशा खुशी से आधा घंटे के पहले, मुरली के पहले आपकी स्थिति तैयार हो, आत्म अभिमानी की अभ्यास व नशा खुशी में कौन आता है मुझे पढ़ाने, कहां से आता है वो खुशी। और क्लास में जब हम बैठते हैं कि आत्म अभिमानी होकर के मैं बाबा का लाडला स्टूडेंट हूँ, गाडली स्टूडेंट हूँ, मैं आत्मा लाडला स्टूडेंट और गाडली स्टूडेंट हूँ, बाबा मुझे आत्मा को पढ़ाने आता है, इस स्थिति में वो निराकारी अवस्था की अंदर की एकाग्रता से मुरली सुनना चाहिए। लास्ट ईयर की अप्रैल 14 मुरली आप सबको याद होगा, बाबा ने कहा अगर साकार मुरली थी, अगर ज्ञान आपके बुद्धि में बैठना है तो क्या स्थिति होना चाहिए। आप बच्चे अव्यक्त ज्ञानमयी स्वरूप में, बिल्कुल ज्ञान स्वरूप अवस्था में जब बैठेंगे, बिल्कुल व्यक्त भाव से परे बैठेंगे, तब ये ज्ञान समझ में आएगा। थोड़ा भी व्यक्त भाव आया, ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आए, ज्ञानमय अवस्था बाबा कहते हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप अवस्था से थोड़ा भी नीचे आए तो मेरी ज्ञान के बीच में माया इंटरफियर ऐसे करती है जो बिल्कुल मेरी महावाक्यों को अशुद्ध कर देती है, तो जिससे स्वयं का और अन्य का अकल्याण हो जाता है। फिर से आप मुरली पढ़िए, 14 अप्रैल की मुरली, इसमें क्लियर कट है, अव्यक्त स्वरूप निराकारी आत्मिक स्वरूप ज्ञानमय अवस्था में विदेही अवस्था में बैठ के ही उस नशा उस खुशी से सुनो, तब बुद्धि में बाबा की ज्ञान ग्रहण हो सकती है। नहीं तो बाबा सीधा कहता है मेरी महावाक्य माया अशुद्ध कर देती है, व्यक्त भाव मिक्स हो गया, माना बुद्धि में उसका जो जिस राज से जिस भाव से बाबा सुना रहा है उस भाव से उस स्वरूप से हम समझ नहीं सकेंगे मुरली को। हमको आएगा कि हाँ मुरली तो समझ में आ गई, लेकिन उसकी गहराइयों तक जाकर के मुरली का स्वरूप बने, उसका अनुभव करे, उस सुख का उस आनंद का अनुभव करे, ये नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुरली सुनने की विधि में अगर हम कम कर दिया तो फिर सिद्धि, मुरली की सिद्धि क्या है, ज्ञान क्या है। नॉलेज इज ए लाइट एंड माइट, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान एक सिर्फ ताकत नहीं है, अमृत भी है ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो प्राप्तियां नॉलेज मेरी पुरुषार्थ की मार्ग को, जन्म और मरण की मार्ग को, संबंधों की गुह्यता को जो स्पष्ट करते हुए, मुए अनुभव करते हुए, मुरली को समझ करके मैं निर्विघ्न निरंतर उस मार्ग पे चलू, ज्ञान मार्ग में, ये नहीं कर पाएंगे। नॉलेज को एक प्रकाश अंधकार की दुनिया में, बाबा ज्ञान की प्रकाश इसलिए दे रहा है जिस प्रकाश के अंदर मेरे बच्चे निर्विघ्नता से चले। सी जहां लाइट होती है वहां कंफ्यूजन नहीं होती है, ये है या वो है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्पष्ट समझ में आ जाता है प्रकाश में, लाइट के अंदर। लाइट नहीं है तो कंफ्यूजन है ना, मनुष्य है तो समझेंगे ये भूत है क्या, धागा है तो समझेंगे ये सांप है क्या, कंफ्यूजन होती है। तो ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है तो अंदर दुर्दशा, दुविधा, कंफ्यूजन, ये है या वो है, ये करूं या वो करूं, ये श्रीमत है या मनमत है, ये मेरे से क्यों चल होता है, मेरे को ही क्यों आता है, अनेक प्रश्न जो होता है, कारण ज्ञान की गहराइयों की स्पष्टता, जो प्रकाश ज्ञान को मैं दिव्य बुद्धि के आधार से अनुभव करूं, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही बाबा की श्रीमत है। ज्ञान यही कहता, इतना जो निश्चित मेरी मार्ग की स्पष्टता वो तब होती है जब निरंतर मेरी दिव्य बुद्धि काम करती है। दिव्य बुद्धि थोड़ी भी मिक्स होती है, ज्ञान मुरली सुनने टाइम थोड़ा भी अंदर बुद्धि इधर उधर गया या किसी और प्रभाव में आकर के आप बैठ गए क्लास में, या ऑलरेडी बुद्धि डिस्टर्ब है परिस्थिति के कारण आप बैठे रहेंगे क्लास में, पॉइंट्स भी कानों में पड़ेगा लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं जाएगा, आपको समझ में आएगा। हाँ मालूम है ना, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वृक्ष भी मालूम, सीढ़ी भी मालूम, चक्र भी मालूम, लक्ष्मी नारायण भी, सब मालूम, लेकिन सब मालूम बाद में कुछ भी नहीं। तो ये जो सुनते सुनते, क्योंकि बाबा की रोज की मुरली अलग अलग कंटेस्ट में बाबा सुनाते हैं, सेम नहीं सुनाते। सी बाबा की सागर की मुरली, सागर की लहरें ऐसे है, चार लाइन भी कितना भी बुद्धिमान हो एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर सकता है। मुरली इतनी गहरी है, तो इसलिए मुरली को सुनने के लिए हमारी दिव्य बुद्धि की कंडीशन क्या है, 73 की ये मुरली में बाबा ने क्लियर कर दिया। सी मैं दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दोनों बर्थडे के गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप में दे रहा हूं बच्चों को, बट इस पर माया की भी आंक है, निरंतर आंक है। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना है, दिव्य बुद्धि सेफ रहना है, तो एक कंडीशन है क्या बाबा कहते हैं, अनटच ऑफ बॉडी कॉन्शियस, देह बांध की प्रभावों में भी नहीं, लगावों में भी नहीं, तभी दिव्य बुद्धि सेफ काम करेंगी। दूसरा कोई भी और प्रभाव में नहीं होना चाहिए बुद्धि। तो दिव्य दृष्टि वो भी माना, बुद्धि की नेत्र, ज्ञान का जो नेत्र है वो स्पष्ट, बाबा को देखना, परमधाम को देखना, स्वयं आत्मा को देखना, सृष्टि चक्र के अपनी पार्ट को देखना, जो भी देखते हैं अनुभव करते, गहराइयों में जाने के लिए दोनों चाहिए, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। तो ये दोनों बातें मुझे स्पष्ट मिला तो है, लेकिन मैं उसको सेफ रखा है। स्पेशली मुरली सुनते टाइम बिल्कुल वो अवस्था बनाते हुए रोज मुरली, उस नशा, उस खुशी, बाबा मुझे परमधाम से आके पढ़ाते हैं। अभी आप सोचेंगे परमधाम से कहां से आता है, वो तो साकार बाबा का टाइम था, अभी तो नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक दिन इसका जवाब दिया है बाबा ने अव्यक्त मुरली में, बच्चे में रोज क्लास शुरू होता है तो मैं वतन से प्रेजेंट हूं क्लास में, हर बच्चे के साथ मेरा संबंध है, जिसको जो देना है वो मैं देता हूं, पढ़ने वाले कोई भी हो। तो ये सभी आपने अनुभव किया होगा। पीछे दिन थोड़ा हम गलती भी करते हैं, उसका सावधानी क्लास में मिल जाता है। नहीं, मुरली हजारे लोग हो, दो सपोज अमृत वेले उठने में थोड़ा ऐसा किया तो रहेगा, बच्चे कभी अमृत वेला मिस नहीं करो। फिर कभी थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया होगा अंदर भी, कहेगा गुस्सा करके दुख देना बड़ी बात है। जो भी बातें हैं तो बाबा हर बच्चे को, ये पालना है ना, बाप के रूप में या शिक्षक के रूप में, किसी भी संबंध में बाबा हम बच्चों को निरंतर करेक्शन देता, हमें पालना करता, हमें आगे बढ़ाता, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो हम उस स्वरूप में, उस रीति से हम मुरली सुनते, उसको समाते हैं। नॉलेज इज ए लाइट, हर वक्त कोई भी परिस्थिति आवे लेकिन हम मूंझे नहीं, हमारी स्थिति हिले नहीं, क्योंकि सारी बातों का ज्ञान बाबा बोल दिया है। सी, आपको सपोज कंफ्यूजन है भी, अब एक मिनट बाबा के रूम में जाओ, जाकर के बाबा को सब कुछ बोलो, उसके बाद आकर के एक अव्यक्त मुरली खोलो, वहां आपको आपकी प्रश्न का, आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। बाबा बात करेगा उसमें, बच्चे ऐसे करो, ये करो। सिर्फ बाबा पर इतना अटूट अटल निश्चय चाहिए, कभी भी जीवन में मूंझो नहीं। अगर वो भी समझ में नहीं आता है, लेकिन निमित्त से जहां आपका विश्वास है वहां अपने मन को क्लियर करके सदैव हल्का रखो, लाइट रहो जीवन में, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है, अनमोल है ये जीवन, क्योंकि ये भगवान की पालना है, ये प्राप्ति है, इसको कभी अपने हाथ से ना चले जाए, क्योंकि हर सेकेंड पदमा पदम प्राप्तिया है, कदम में पदम की कमाई है। तो आपको लगता है कदम में पदम की कमाई है या और कोई बातों में बुद्धि चली जाती है? सेवा भी हो, लेकिन सेवा कितना भी करो, लेकिन सेवा याद से, सेवा में सिर्फ कमाई ही, और विधि पूर्वक सेवा में एक्सट्रीम खुशी और दुआओं का फल अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ सेवा करते करते, सेवा में हम दूसरों के ऊपर दोष दे देते, एक्चुअली दूसरों पर दोष देने की दरकार नहीं। जो भी है हमारा कोई ना कोई कमी है, जिस कारण हमारे आगे वो पेपर है, परिस्थिति है, उसको पार करना, उसमें उलझे रहना, ये अपने हाथ पर है। लेकिन मुरली की गहराइयों में ज्ञान लाइट भी है, ज्ञान माइट भी है। ज्ञान से हमारी पुरुषार्थ की जो मार्ग है, चारों सब्जेक्ट की पुरुषार्थ अर रोज कभी कम नहीं होना चाहिए। कितना भी बिजी रहो बट टाइम लो। हमारी दादियां कहते थे 350 लोग थे हम, 350 परिवार में कितना काम होता, कितना सारा बातें होती, ये सब कुछ होते हुए दादी कहते थे हमें, हम बहुत टाइम लेते थे। बाबा कहते थे जाके छत पर बैठो, सारी रात बैठो, ऐसे करो ऐसे करो, पुरुषार्थ कराते थे। तो हम क्यों नहीं ले सकते? बाकी वो इंटरेस्ट की बात है। हम बातों में परिस्थिति के कारण, व्यक्तियों के कारण उलझे नहीं, माना कंफ्यूजन में नहीं आवे, जिसमें हमारा बुद्धि पर कोई माया का छाया ना आ जाए। क्यों? ज्ञान की अनुभूति में हर बात की अनुभूति चाहिए। आत्मा, आत्मा की ज्ञान, फर्स्ट लेसन, द मिस्टीरियस लेसन। दुनिया में गुह्य ते गुह्य बात कहो, ज्ञान कहो, मिस्ट्री कहो, ये है आत्मा। अब तक भी ये बिल्कुल ना विज्ञानियों के हाथ लगा है, ना ऋषि मुनियों के हाथ लगा है, ना कोई विद्वान पंडित के हाथ लगा है। सिर्फ एक शब्द कहते हैं, हाँ ठीक है आत्मा है, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म बिंदु, इसके अंदर 84 जन्मों की इतना सारा पार्ट नूंद है, और एक एक जन्म का पार्ट सत्युग 150 वर्ष, अंत तक 80-100 ही रखो, अभी सिर्फ बहुत लास्ट में 60-70 वर्ष तक चल रहा है, कभी दूसरों का 30 वर्ष ऐसे कुछ चलता है, लेकिन इतना भी सारा ज्ञान आत्मा में पार्ट का, तो ये सोचो मैं क्या चीज हूं। मेरे अंदर मैं आत्मा हूं, एटम से अति सूक्ष्म आत्मा बिंदु, उसके एटम, ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो एक एक चीज, तीन है, तीन एक एक भी पावरफुल है, न्यूट्रॉन बम सब कुछ दुनिया को नाश कर सकता है। तो आप सोचो मेरे अंदर कितनी एनर्जी होगा, बट व्हाट एनर्जी, मैं प्रकाशमय बिंदु हूं लेकिन कौन सी लाइट हूं। अभी हम बैठे एक मिनट के लिए, हम देखे मुरली में, बाबा आप आत्मा हो, आप बिंदु हो, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मुख से बोलते हो, बट जस्ट ए लाइट। यहां बैठ के मैं स्थूल कर्मेंद्रियों को कनेक्ट होती हूं, मस्तक के बीच बैठ रहे हैं, सुनते सुनते हम अनुभव करें। मैं बिंदु, पहले अपनी प्रेजेंस अनुभव करो, मुझे मस्तक बीच चमकती हुई सितारा हूं, यह हम अनुभव करें। मैं बिंदु लाइट, आंखों से देखती हूं, आंखें नहीं देखती, मैं बिंदु देख रही हूं। कानों से सुनती हूं बट कान से अलग, आंखों से अलग, मैं बिंदु। मुख से बोलती हूं लेकिन मैं बिंदु बोलती हूं। मेरी अस्तित्व, मेरी प्रेजेंस मस्तक में बीच अकाल तख्त पर बैठ में अकाल मूर्त ये सब चलाती। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, धीरे धीरे मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। मैं दिव्य तेजोमय लाइट, फिर से हम अपन को देखे, आपको अनुभव होने तक छोड़ना नहीं है, फिर संकल्पों की स्पीड कम करते हुए फिर विचार करें, मैं अति सूक्ष्म बिंदु, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। मैं अति शांत हूं, आंखों से देख रही हूं, देखते हुए मैं अपन को देख रही हूं, देखते हुए न देखना, बुद्धि के नेत्र अपने स्वरूप को देख रहा है। कानों से सुनते न सुन रही हूं, मैं अपने को देखने में बिजी हूं। स्पष्ट सूक्ष्म रीति से देखते हुए मैं एकाग्र हूं, मुख से बोलती हूं, एकाती हूं, बट इन कर्मेंद्रियों से न्यारी बिंदु धीरे धीरे मैं इस शरीर से अलग, शरीर से बाहर अपन को देख रही हूं। मैं बिंदु लाइट, अपने को विष्णु चतुर्भुज शरीर में देख रही हूं। मैं स्पष्ट उस शरीर में हूं, यह अनुभव हो रहा है। मैं बिंदु इस शरीर को भी साक्षी हो देख रही हूं। प्रकाश स्वरूप हूं। ऐसे फिर से मुरली की जो जैसी बात आती है उन बातों को अनुभव करने लिए चिंतन करते करते उसको रिवाइज करके उस अनुभव में एकाग्र एकरस एकाग्रता में उन बातों को स्वरूप में उतारो, फिर कर्मों में उतारो। ऐसे सीडी का चित्र में जन्मों की वॉक थ्रू 84 जन्मों में आप चले जाओ। कभी मैं ऋक्षपति का बच्चा मास्टर बीज रूप आप जो नीचे बीज ऊपर जो हमारा वृक्ष को दिखाते हैं ना इन्वर्टेड ट्री, ट्री सदैव ऐसा होता है, बीज नीचे तना नीचे, लेकिन हम जब देखें उस नशे से उस खुशी से उसको तना ऊपर बीज के साथ कनेक्शन, मैं तना में बैठी हूं और सारी दुनिया को देख रही हूं। कभी तपस्वी फिर तना में बैठ करके ऊपर सारा जो कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या किया, कभी ऐसे करो। जैसे जैसे मुरली की बातें हर रोज 5 मिनट दो 10 मिनट दो, लेकिन उसकी अनुभूति उस बात का ज्ञान समझ स्पष्ट हो मेरे अंदर, ताकि कोई भी परिस्थिति में उन बातों को मैं क्लियर प्रयोग कर सकूं, हर संबंध में हर परिस्थिति में थोड़ा भी इधर उधर नहीं, ऐसे अपन को मैं समझूं और देखूं। ये जरूरी है आज के दिन, आज की आवश्यकता है। अनुभव की ताकत में पीछे नहीं रहो। ज्ञान तभी, नॉलेज इज अ माइट, अनुभव के आधार से ज्ञान की स्ट्रेंथ आएगा, ताकत आएगा। जब ज्ञान को हजम करना माना, मनन चिंतन के आधार से, मंथन के आधार से उन अनुभवों में हम खो जाए, तभी वो मेरा हर पॉइंट, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा ताकत बनेगा, नहीं तो वो ताकत नहीं बन सकता है। ऐसा हम करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो नॉलेज ऐसा माइट माना क्या? कोई भी इंसान समझ ऐसी चीज है वो बड़ा ताकत दे देती है। तो समझो कोई पेशेंट सोया हुआ है, बेड पेशेंट, बच्चा भी सोया हुआ है, दोनों के आगे वहां से ये लायन आती है, क्या बोलते हैं, सिंह आती है, तो ये जो आदमी देखता है ये तो आ रहा है, ये तो खा जाएगा, इसको समझ है ये लायन मुझे खा जाएगा, ये क्या करेगा, सारा निकाल के उठ के भागेगा। बेड पेशेंट को ताकत कहां से आई वहां भागने का? समझ, बचाना है जान, क्योंकि नहीं तो खा जाएगा। बच्चा क्या करेगा, वो हंसेगा देखते हुए, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ये खा जाएगा। माना ये उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूं, हर बात की अगर समझ है, उसका अनुभव है, मैं आत्मा, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, इस लाइट को दुख हो सकता है, अशांति हो सकती है, कोई भी बात की अच्छा बुरा की बात आती है, लाइट के आगे नहीं आती है। आत्माभिमानी आत्म स्वरूप की जो अनुभूति है ना, वो जैसे निर्लिप्त निर्लेप अवस्था है, प्रभावों से आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा में सब लेप चेप होता है, लेकिन अगर मैं कंप्लीट सोल कॉन्शियस में रहूं तो उसमें आप सब प्रभावों से मुक्त होने का जिस घड़ी जैसा चाहिए वैसे अपन को ट्यून कर सकते हो। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति के लिए हमारा निरंतर की अटेंशन चाहिए। मुरली मेरी स्ट्रेंथ है, सोर्स ऑफ इनकम है। हर सेकेंड मैं खुश रहूं, शांत रहूं, आनंद में रहूं, ये सब का आधार क्या है? मुरली है। अगर मुरली की पॉइंट उपयोग नहीं करते हैं ना, समय पर ड्रामा हरे की पार्ट कर्म फिलॉसफी आत्म स्वरूप में होके प्रयोग नहीं करते हैं, ये सारा निरंतर जो कमाई चाहिए, निरंतर की खुशी आनंद चाहिए, वो नहीं रहेगा। आप चाहते हो मैं खुश रहूं, नशे में रहूं, उड़ता रहूं, आनंद में रहूं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन बातों का उपयोग प्रयोग में नहीं है, एप्लीकेशन में नहीं है, तो हम रह जाते हैं। बुद्धि खाली है, बुद्धि भरा हुआ नहीं है। तो ज्ञान अमृत है, तो अमृत के रूप में बाबा रोज पिलाता है, हमें निरोगी बनाता है, समर्थ बनाता है। लेकिन अगर अमृत को हजम करने की ताकत चाहिए, वो ताकत नहीं है, तो सारे दिन में परमात्म प्राप्तियां अविनाशी रहे, निरंतर रहे, ये नहीं होता है। तो जितना ज्ञान की कमी है, समझते हुए अनुभव करने में फिर योग में कमी आ जाती है, क्योंकि बाबा योग की सब्जेक्ट की भी ज्ञान दिया है। योग क्या है, योग हम क्यों करें, योग किस से है, और बाबा क्या चीज है, बाबा की महत्व, बाबा का संबंधों का ज्ञान। ऐसे नहीं बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु है, शिव है, परम धाम में है, ये समझा तो संगम युग में आता है, सब देता है, सर्व संबंधी है, इतना समझ गए नहीं है। ये तो जानकारी मिला, इन्फॉर्मेशन, लेकिन बाबा के हर संबंध को पहचानना, ये मेरा बाप है, आत्मा को वो फीलिंग आवे हर संबंध की, हम संबंध जोड़े। हमारी सिर्फ याद नहीं है, संबंधों के आधार से हमारी याद है। योग माना संबंध, संबंध में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आप घर को क्यों नहीं छोड़ते हो? अगर हम कहे तुम आप छोड़ के आ जाओ, आपका उधर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जिम्मेवारी है, कहेंगे ना। बहने क्या कहती है, कहेंगे ना, अरे बच्चे है, घर है, दीदी कैसे आएंगे? नहीं होता है, निभाना है ना। तो बाबा के लिए ऐसे सोचते हो, संबंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमिटमेंट्स है, समय देना पड़ता है। अगर ये सारी बात की समझ, बाबा का वो संबंधों का वो पहचान नहीं है, तो फिर हम निभाते नहीं है। मैं बाबा का बच्चा हूं, बच्चा माना आज्ञाकारी, बच्चा माना बाप ने कहा बच्चे ने किया। बच्चा बुद्धि नहीं चलाएगा, छोटा जो बात माँ बाप कहेंगे वो करता रहेगा, हम करते हैं। बच्चा माना फॉलो फादर, बच्चा माना कॉपी फादर। जी कारपेंटर का बच्चा क्या करता है, अपने पिता ऐसा करता है तो वो भी कुछ लेकर के बैठता है ऐसा, छोटेपन में ही फॉलो करने की कॉपी करने की अकल आ जाती है। तो हम भी अगर मैं बच्चा हूं, मैं आत्म अभिमानी रूप में बाबा को हर बात में फॉलो करना, कॉपी करना, और बाबा जो जैसा बोलता मुझे करना ही है, ये मेरा फर्ज है माँ बाप के लिए। माँ बाप की कर्तव्य को शोल्डर पर लेना ये मेरी फर्ज है। ये नेचुरल आना चाहिए ब्राह्मण जीवन में, कोई कहने की दरकार नहीं है, उसको कहेंगे वारिस। तो बाबा को योग की सब्जेक्ट मेन है, तो योग की ज्ञान अर्थात बाबा की संबंधों का ज्ञान, संबंधों के आधार से कनेक्शन, इसको अच्छी तरह से हम समझे, इसमें कमी नहीं करे, कमी नहीं करे, नहीं तो योग नहीं लगता। एक तो ज्ञान पहचान ठीक हो, दूसरा बाबा से योग संबंध ऐसे ही नहीं जोड़ सकते हैं, संबंध में एक आज्ञाकारी, संबंध में समानता। फ्रेंडशिप कैसे होता है? समान है तो फ्रेंडशिप होता है, ज्यादा टाइम हम चल सकते हैं। दोनों का मैचिंग ही नहीं है, उनका अपना लाइन है, मेरी अपने लाइन है, तो फिर हम संबंध जोड़ नहीं सकते, वो रहेगा नहीं। तो बाबा की चाहना क्या है? ये प्यार वन वे ट्रैफिक नहीं है, प्यार हम करते हैं तो प्यार लेना भी पड़ता है, दिल देते हैं तो दिल लेना भी पड़ता है। हम बाबा को दिल दे दिया, बाबा मैं आपका हूं, लेकिन बाबा की दिल में क्या है, बाबा की चाहना क्या है मेरे लिए, उनकी आशाएं क्या है मेरे लिए, पसंदी क्या है, उसको समझते हुए मैं करूं, तब संबंध में निरंतरता, वो जोड़ना, वो लेन देन होती है। प्यार में प्यार मिलता है, जितना मैं जिगरी प्यार करता हूं बाबा भी मुझे प्यार करते हैं, याद से याद मिलता है, प्यार से प्यार मिलता है, भासना आती है, अनुभव होता है। थोड़ा भी ऐसा, अभी घर में आपके बच्चे हैं, थोड़ा भी सेंटर में आके लेट में करते हो तो लाता है ना, उधर छोड़ के आई हूं, मुझे जाना है जाना है जाना है। तो ऐसे आप नीचे थोड़ा भी बिजी है तो आपको आता है बाबा अकेला है, मुझे जाना है, बाबा से बातें करना है, बाबा मुझे मिस करेगा, ये खींच होती है। हम बिजी है तो बिजी, फिर शाम को हेलो बाबा किधर हो कैसे हो, ये थोड़े ही योग होता है। फिर आप बोलते रहो बहुत अच्छे हो, बहुत ठीक है बाबा, आप सारा इतना करते हो, बुद्धि से दिमाग से याद करो, दिल है ही नहीं तो फिर कहेंगे अनुभव होता नहीं। फिर शक्तिशाली पावरफुल याद चाहिए, ज्वालामुखी याद चाहिए, ज्वालामुखी कैसे होंगे? तो ये दो, एक बात ये है, संबंधों को समझना है, संबंधों में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। फिर योग में मेन बात है बाबा के आज्ञा, बाबा माना श्रीमत, बाबा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, फिर आप योग में बैठेंगे कितना भी कोशिश करो योग नहीं लग सकता है। योगी वो है जो, पहली बात निरहंकारी हो, योगी वो है बाबा के आज्ञाकारी हो, संबंध बाबा से तब जुड़ सकता, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? तो योग की गहराइयों के लिए हमें इन बातों को सदैव श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करना, हर कदम पे हमारी अटेंशन हो, तब योग नेचुरल होता है। बाबा के अनुसार चलते चलो और ज्यादा कुछ नहीं करो, फिर आप देखो आपका खुशी, आपका नशा, आपका योग कितना नेचुरल होता है। अपनी स्थिति को सारा दिन भी जितना ज्ञान युक्त रखो तब भी कुछ बहुत कुछ होता है, ठीक है?
ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर आपने, ज्ञान और योग हम सबके पास है, लेकिन उसकी गहराई और गहराई के साथ साथ उसका रियलाइजेशन जो आपने क्लास के माध्यम से और रिफ्लेक्शन इतना अच्छा आपने कराया, थैंक यू दीदी सो मच। तो हम एक हाथ की ताली से अंबिका दीदी का थैंक यू करते हैं